शिव जी महाभागवतों में से एक महाभागवत है, अनेक शिक्षा ले सकते हैं, पर शिव जी के अंदर जो कथा श्रवण करने का जो तीव्रता है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। कुछ उनके गुणों में ये गुण है कि वो भगवान के कथा श्रवण करने के लिए बहुत ही लोलुप रहते हैं। तो आप सब भी वो गुण को स्मरण करते हुए इस गुण को अंदर लेने का, हम सबको ये गुण ग्रहण करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। भक्ति का प्रथम सोपान बोलते हैं, पहला सीढ़ी जो है श्रवण है। हाँ या ना? ऐसा हो गया, आप लोग इतने भाव विभोर हो गए हैं कि मूर्छित हो गए। हरे कृष्णा। हाथों से ताली।
भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। जय प्रभुपाद। वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पश्चता दिशतारिणे। वे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
बोलिए सब लोग हृदय के अंतकरण से भाव विभोर होकर
ओ हरे राम
और उनके स्वर में
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
बोलिए सब लोग प्रेम से और उसके स्वर में
Hare Rama, Hare Rama. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Bolo 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 bolo.
Hey, Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधा माधवा तुझा बिहारे जय राधा माधवा तुझा बिहारे जय गोपी के नव लोग गिरवर धारे जय यशोदानन्दन भज जनेरञ्जन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिदाय जय गौरानिदाय जय सचि नंदन जय सचि नंदन जय सचि नंदन गौर हरे हे दाने 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 दाय गौरांग हे दाने 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 दाय गौरांग
चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी बीआई फाउंडर आचार्य श्री वीर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सीफुल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य श्रेष्ठोत्तर सती ज्वाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गिरि गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौरनिताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की All glories to the sun, all devotees, all
All glories to the Sambal devotees. All glories to the Sambal devotees. All glories, all glories to Sri Guru Ranga. All glories to Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Savior of the whole world, the most merciful AC Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki. Gaurari Premanande, Gaurari Premanande, Gaurari Premanande, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari
Hare Krishna. सभी कृपा करके दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाए. ये जो मुद्रा है नमस्कार का, ये हृदय में एक विनम्र भाव उत्पन्न कराता है जिससे ज्ञान का भक्ति का वर्धन होता है. दोनों हाथ जोड़कर वन रसराज श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का, जो कि सुंदर मोरपंख धारण करते हैं, जिनके गुंगराले लंबे केश हैं, त्रिभंग ललित रूप धारण करके सबके चित्त हारते हैं, उनका ध्यान करते हुए दोनों अंग बंद करते हुए मेरे इन मंत्रों का उच्चारण करें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यं प्रवर्जन्तम् अनुपेत्यपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुवां पुत्रेति तन्मयातया तरहो अभिनेदुः तं सर्वभूतं हृदय मुनिमानोऽस्मि. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टकी. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 श्लोक श्रृंखला 25 और अध्याय नंबर 1 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। आइए इस सुंदर श्लोक का दर्शन करते हैं। यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, इसके एक एक शब्दों का उच्चारण करते हैं और आगे इसके भाव इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। विष्णु हो माया भगवती यया सम्मोहितं जगत अदिष्टा प्रभुना अंशेन कार्यते संभविष्यति। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं विष्णुर्माया भगवती विष्णुर्माया भगवती याया सम्मोहितं जगत् याया सम्मोहितं जगत् अदिष्टा प्रभुनां शेना अदिष्टा प्रभुं सेना कार्यार्थे संभविष्यति कार्यार्थे संभविष्यति विष्णुर्माया भगवती याया समोहितं जगत् अदिष्टा प्रभुनां सेना कार्यार्थे संभविष्यति विष्णुर्माया भगवती याया समोहितं जगत् अदिष्टा प्रभुनां सेना कार्यार्थे संभविष्यति। प्रभुओं में एक और वैष्णवों में एक विष्णु माया भगवती याया सम्मोहितं जगत् अदिष्टा प्रभुनां सेना कार्यार्थे संभविष्यति। माता जो वैष्णवी विष्णुर्माया भगवती याया सम्मोहितं जगत् अदिष्टा प्रभुनां सेना कार्यार्थे संभविष्यति। सब लोग एक साथ
माया भगवती या समित जग अदिशा प्रभु
धन्यवाद। इस श्लोक में आए शब्दों का उच्चारण इसके शब्द अर्थ मेरे बाद सब दोहराइए।
विष्णु माया
भगवान विष्णु की शक्ति
भगवती
भगवान के ही समकक्ष अतएव भगवती नाम से जानी जाने वाली
या
जिससे सम्मोहितम मोहित जगत सारे जगत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों अधिष्ठा आदेश पाकर प्रभु नाम स्वामी के द्वारा हमसे अपने विभिन्न शक्तिशाली कारकों के साथ कार्यार्थे प्रभु काम करने के लिए क्षमा करें पूरा काम करने के लिए पूरा काम करने के लिए
संभविष्यति
जन्म लेगी। ये कौन कह रहा है? ये श्लोक कौन कह रहा है? वैष्णवियों ने शुरू शुरू में थोड़ा सा बताया, थोड़ा कम धीरे वॉल्यूम में बताया इस श्लोक का उच्चारण किसने किया। ये 6000 पहले घटित घटना है। इतना सुंदर बात किसने कहा, किससे कहा? थोड़े जोर से और कोई, मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव, तो थोड़ा बहुत आदान प्रदान होता है। तो बहुत सही बताया ब्रह्मा जी, आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारित श्लोक है। किससे कह रहा है, किससे कह रहा है? नारद ऋषि और अनेक अनेक देवताओं के समूह सबको कह रहा है। क्या कह रहा है? अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। विष्णु द्वारा विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान की ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी, भविष्यवाणी कर रहे हैं जैसे उन्होंने कृष्ण से श्रवण कहते। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के अनुरोध पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। बड़ा तात्विक श्लोक है। इस श्लोक का मर्म अगर हम जान जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा हाल आज ऐसा क्यों है। तो बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए तो पता लगेगा हम जो भी आज हैं, इधर या उधर, आर या पार, इसके पीछे किसका शक्ति है? भगवान कृष्ण का शक्ति है। कौन सा शक्ति है? योग माया या महामाया। तो ये ध्यान से श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए इस श्लोक का तात्पर्य का। प्रभुपाद जी द्वारा रचित ये श्लोक के तात्पर्य जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा, इट्स माय ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स माय ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। इसका अर्थ यह है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मेरा बहुत ही भावपूर्वक आध्यात्मिक आनंद का लेख है। बड़े भाव विभोर आनंदित होकर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस अभी कुछ लिखना है, नहीं भाई, बड़े आनंद में मग्न होकर लिख रहे हैं। तो हमें भी आनंद में मग्न होकर श्रवण करना है। थोड़ा लंबा तात्पर्य है तो समझ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भाव इसमें डाले हैं। हम इन शब्दों को श्रवण करते हुए कहीं मूर्छित ना हो जाए, भाव विभोर ना हो जाए, इसके पूरे शब्दों का रसपान कर ले लें, फिर बाद में मूर्छित हो जाना, क्योंकि कुछ शब्दों का प्राथमिक श्रवण कर लेंगे आप भाव विभोर हो जाएंगे, उसके बाद आने वाले जो अर्थ है उसे आप देखो, वहां पे एक तो प्रभु एकदम से तकिया वकिया लेने कर नहीं, मैं कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का लंबा तात्पर्य आता है तो सब लोग सोचते हैं कि बस अभी, ऐसा नहीं, भाव विभोर होकर श्रवण कीजिए, एक एक अर्थ को ग्रहण कीजिए, फिर बाद में इसका मनन करते हुए पूरे दिन मस्त रहिए। तो यह है श्रवण। शिवरात्रि के दिन शिव जी का एक गुण है कि वो बड़े ध्यान से भाव विभोर होकर श्रवण करते थे, है ना, ये गौर लीला के अंतर्गत भी गौर कथा श्रवण करने के लिए शिव जी आते हैं, वो फिर कभी मैं सुनाऊंगा। पर बड़े वो तीव्रता है उनके, तो ये तीव्रता ही हमें इधर या उधर कराएगा, किधर, आर या पार, अर्थात भौतिक या आध्यात्मिक जगत में यही तीव्रता लौलुपता जो है कराएगी। तो जो भी है प्रभु जी के तात्पर्य बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। परस शक्ति विविधाय सुयते, श्रोतास्वत उपनिषद 6:8। वेदों में कहा गया है कि भगवान की शक्तियां विविध नामों से पुकारी जाती है, यथा योग माया तथा महामाया, दो नाम से। कौन से नाम है, हाँ मैं चेक कर रहा हूं कि आप सब कितने भाव विभोर हो चुके हैं। तो बोलिए कौन से नाम से जाने जाते हैं, योग माया, यथा योग माया तथा महामाया। किंतु अंत गतवा भगवान की शक्ति एक है, ठीक उसी तरह जिस तरह की विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह शीतल करने तथा गर्म करने वाले दोनों को ही कार्य करती है। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे करंट जो है एक ही है, पर एयर कंडीशन लगता है तो शीतल और हीटर लग जाता है तो गर्म। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है, दुर्गा माँ जिसका मूर्तिमान स्वरूप है, भौतिक जगत को वश में रखती है और योग माया के रूप से आध्यात्मिक जगत को वश में कर देती है। दोनों तरह भगवान उनको नियंत्रण करने का आज्ञा देते हैं। आध्यात्मिक जगत में वह योग माया के रूप में कार्य करती है तो भौतिक जगत में ही वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों के काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित कराने वाली है। कहा गया है कि यया सम्मोहितो जीव आत्मन विष्णुर आत्मकम्। बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने को तीन गुणों त्रिगुण की उपज मानता है। उपज का अर्थ क्या है? प्रोडक्शन। महामाया के अंतर्गत आ जाते हैं तो बद्ध जीव सोचता है कि मैं ये भौतिक जगत का हूं, तो ये अर्थ है। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि महामाया का ऐसा गहरा प्रभाव है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर है। प्रभुपाद जी बताएंगे अभी और हम शरीर से उत्पन्न हुए, हम इस भौतिक जगत के उपज है। पीछे सब लोग समझ रहे हैं? हाँ या ना? पीछे भाव विभोर तो हो गया कि नहीं? पूरी तरह से मस्त हो गए, पूरा आनंद लीजिए इस तात्पर्य का, पूरा आनंद लीजिए। दो शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया तो समय दिया जाएगा प्रवचन के बाद, ठीक है? पूरी तरह से तल्लीन हो जाइए। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा गया है कि समोहित जीव आत्मा नाम विष्णु आत्मकम्। बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने को तीनों गुण त्रिगुण के उपज मानते हैं। यह देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के तीनों गुणों से अपने को संबद्ध करके ही कारण अपने को अपना शरीर मानता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि आई एम नॉट दिस, आई एम, मैं ये शरीर और मैं आत्मा हूं। पर बद्ध अवस्था के कारण हम क्या समझते हैं? ये देह आत्म बुद्धि है, मैं ये शरीर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं गुजराती हूं। ये सब क्यों होता है? देहात्मा बुद्धि, महामाया। कोई अपने को ब्राह्मण तो कोई अपने को क्षत्रिय मानता है और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। वह तो भगवान के अंश है, ममेव अंशः। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रचन्न होने के कारण वह विभिन्न विभिन्न ढंगों से अपनी पहचान कराता है। कौन पहचान कराता है? जीव अपने विभिन्न विभिन्न पहचान कराता है। कहते कि मैं अब विद्यार्थी हूं, मैं बिजनेस वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये विभिन्न पहचान क्यों हो रही है? कारण कौन है? कौन सा शक्ति है? महामाया, ठीक है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। बोलिए, जीवेर स्वरूप है। हम क्या है? कृष्ण के नित्य दास। ये हमारा असली पहचान। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति योग माया उसे शुद्ध बनाने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में अत्यधिक सहायक बनते हैं। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसे कि भगवद गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, माया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचर आचरम। भगवान की ही आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विभ्रात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। कौन कह रहा है ये बात? ये सुंदर श्लोक कौन कह रहा है? कहाँ कहा है? किसने कहा? किससे कहा? किसने कहा? भगवान ने किससे कहा? अर्जुन से कहा गीता में। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ जान लो। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय के 27 श्लोक। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने से मूर्तावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का अत्यधिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो स्वरूप है, आवरणिका तथा उन्मुख। जब भगवान अवतरण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा देवकी तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस, साल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने विभिन्न रूप से कार्य किया। उसने भिन्न रूप से कार्य किए। कृष्ण, भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यति संविष्यति। इस श्लोक का आखिरी लाइन का यहां विस्तार से किए। योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया, जैसा कि भगवद गीता के 90 अध्याय के 13वें श्लोक में पुष्ट हुई है। महात्मानां स्तुमां पार्थ दैवीं प्राकृतम् आश्रितम्। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया के द्वारा निर्देशित होते हैं। हम महात्मा है या दुरात्मा है, ये किस पे निर्भर होता है कि हम योग माया के अंतर्गत है या महामाया के अंतर्गत है। बड़ा तात्विक ये श्लोक, ये बातें हैं, इसे हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहां श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं स्वगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज के इस रविवार के प्रातःकाल श्रीमद्भागवतम सत्र में भक्तों का स्वागत। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री श्री राधा गिरधारी जी, जिनके परम अनुकंपा से आज अंतर छाया के अंतर्गत उनके चरण कमलों में श्रवण कीर्तन और सेवा प्राप्त हो रही हैं, ऐसे करुणामय भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नगमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे विराजमान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, जो कि अपने विशाल कमल नेत्रों से सदा कृपा का दृष्टि बरसाते हैं, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी उनके परिकर सहित के पदारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युगावतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन इस धरातल पर लाए, पात्र पात्र ना देखते हुए हम सबको ये सुंदर रत्न प्रदान कर रहे हैं। ऐसे महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिविलास स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम, और इस प्रवचनों को ट्रांसमिशन के रूप में अलग अलग क्षेत्र में श्रवण करने वाले वैष्णव वैष्णवों के चरणों में प्रणाम, और आगे इस सत्र को श्रवण करने वाले वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सबसे ये प्रार्थना है कि मेरे पर ऐसे कृपा करें और मुझे ऐसे दिव्य शक्ति प्रदान करें जिससे कि गुरु वैष्णव और प्रभुपाद जी को मैं इस सेवा के माध्यम से प्रसन्न कर पाऊं। तो इसी के साथ आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रवचन को आरंभ करते हैं। परम मंगल परम पावन यह श्रीमद् भागवतम है। यह वैष्णव संतों का महाधन है श्रीमद् भागवतम। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन भगवान श्री वृंदावन चंद्र जी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकलादनी सजन सुहृद हलादनी कंसकुल हारनी महारानी भज्जी के डबल धारा के किनारे में आमरण अनशन व्रत परायण उन महाराज जी परीक्षित जी को भगवान के कृष्ण के दिव्य चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल कथा प्रसंग में हमने भगवान के बड़े भैया बलराम जी का श्रवण किया, तो आज उनकी बहन और उनके शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। यह जो कथा है, इस कथा प्रसंग का संक्षेप में मैं थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जो भक्त लोग नित्य प्रातःकाल भागवत सत्र में उपस्थित नहीं है उनके लाभ के लिए, और बाकी जो नित्य प्रातःकाल कक्ष में आए ध्यान से श्रवण करें और आनंद लें। ये दशम स्कंद का यहां पे कृष्ण लीला का कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, साक्षात कृष्ण है। और ये दशम स्कंद जो है ये भगवान का मुखमंडल माना जाता है, सुंदर भगवान का मुखमंडल जो है, उनके सुंदर नयन, उनके गुंगराले केश, मोर मुकुट। ये श्रीमद् भागवतम जो है, खास करके दशम स्कंद जो है, इसमें भगवान का भक्तों के साथ अपने संबंधियों के साथ जो रस है उसका आदान प्रदान देखा जाता है। दास्य साक्य वात्सल्य ये सबका माधुर्य का वर्णन आता है, सुंदर। ये श्रीमद् भागवतम जो है दशम स्कंद ये बहुत ही रोचक है, भक्ति भाव से लबालब भरा हुआ है। सुंदर सुंदर पांच या चार या पांच गीत है, कहते ना ये सुपरहिट पिक्चर है, मारधाड़ और गीतों से लबालब भरा हुआ है, अच्छे अच्छे डायलॉग्स है। तो इस दशकंद जो है भक्ति भाव से लबालब भरा हुआ है। गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, भवर गीत, इतने सुंदर सुंदर गीत हैं और मारधार से भी भरा हुआ है, तृणावत, सक्तासुर, बकासुर, धबाधब, मारदाड़ और प्रेम से भरा, सब कुछ है। निवृत्त तर से, जो निवृत्त हो चुके हैं इस जगत के तृष्णा से, यानी कि तृष्णा का अर्थ होता है इस जगत से मुझे कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, कृष्ण को छोड़कर जो कुछ भी चाहिए वो भाव को तृष्णा कहते हैं। जो उनसे निवृत्त है वो भी इसमें आना चाहते हैं, और जो निवृत्त नहीं हो चुके हैं, तृष्णा में पड़े हैं, वो भी कृष्ण की कथा में को श्रवण करके करके उनके अंदर जो तृष्णा है वो चले जाएगी, और वो कहेंगे कृष्णा कृष्णा, और उसका आनंद लेंगे, उसका तृष्णा मिट जाएगी और कृष्णा आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये दसम स्कंद है, बहुत सुंदर भगवान के भक्तों के साथ आदान पर। अब तक जितने भी कथा है वो भगवान के ऐश्वर्य को प्रदान कराता है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के भक्त कितने तीव्रता से भगवान के भक्ति किए, इस जगत के अंतर्गत वो आते हैं, भगवान दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, आदान प्रदान उतना नहीं होता है। ध्रुव महाराज जी भगवान का दर्शन कितने समय तक किए थे, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के साथ नरसिंह भगवान कितने देर आए थे, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। कपिल भगवान अपनी माता देवती के साथ कुछ सालों तक रहे, पर वास्तविक आदान प्रदान कुछ समय के लिए कपिल गीत के द्वारा, आदान प्रदान नहीं दिखाया जाता, ज्ञान का ऐश्वर्य दिखाया जाता है, उनके वैभव का ऐश्वर्य देखा जाता है। भगवान अपने भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं वो यहां हमें देखना, बहुत सुंदर ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद है। रस से लबालब भरा हुआ है, ये रस क्या है, जो फल होता है उसका सार क्या है, रस, फल का सार क्या है, रस, मीठापन, मधुरता, वो है सार। इसी प्रकार से यह संबंध जो होता है इस संसार में माता पिता का, दोस्त दोस्त का, और मालिक नौकर का, ये प्रेमी प्रेमिका का ये एक रस होता है, तब तो संबंध बनता है ना। दोस्त दोस्त में यारी क्यों रहती है, कुछ आदान प्रदान है, मीठापन है, जिस दिन ये मीठापन नहीं रहता है दोस्त दोस्त नहीं रहता है। पति पत्नी एक साथ क्यों रहते हैं, इस संबंध में कुछ मीठापन है, इसीलिए तो वो साथ में रहते हैं। जब मीठापन नहीं रहता है तो ये भौतिक जगत का जो संबंध है उसमें थोड़ा सा मीठापन है, ये मीठापन वास्तव में चखने के लिए हमें ये मानुष्य शरीर दिया गया है, हमें ये मीठापन चाहिए, हमें ये रस चाहिए। आनंदम अम्बुद्धि वर्धनम, हमें वो आनंद चाहिए, उसका वर्धन कराना है, हमें वो संबंध के अंदर जो मीठापन है वो चाहिए, चाहे दोस्त दोस्त या मालिक नौकर या प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, उस रस चाहिए हमें। आजकल लोग विवाह करते हैं तो विवाह करते वक्त वे एक पत्रिका लिखते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसके, करेक्ट, अमेरिका में उसको मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं आपके जानकारी के लिए। साथ ही साथ वो नीचे वो कार्यालय में जो नौकरी करता है वो सेवक, वो क्या करता है, विवाह के सर्टिफिकेट के साथ वो डाइवोर्स का भी सर्टिफिकेट रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनका जो संबंध है एक दिन के लिए ही रहेगा या दो दिन, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन, उसके बाद डाइवर्स का एप्लीकेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मीठापन नहीं मिला, उस संबंध के अंदर मीठापन नहीं मिला। कृष्ण रससेकर है, रसिक रसराज है, ये हम सबके साथ संबंध रखना चाहते हैं। हम सबके साथ, हर एक जीव के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ हमारा भगवान का साथ एक संबंध है। हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है और इस आध्यात्मिक शरीर से हमारा भगवान के साथ एक संबंध है। उस संबंध को जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है, इस संसार में एक एक संबंध को हम स्वीकार करेंगे, फिर कहेंगे ये नहीं चाहिए, दूसरा संबंध चाहिए। जब तक वो वास्तविक संबंध हमारा भगवान के साथ नहीं होगा, तब तक हम आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। कृष्ण आनंद हमें देना चाहते हैं, कृष्ण हमसे वो आनंद लेना चाहते हैं, पर हम कहते हैं कि नहीं, कृष्ण आप अपने जगह में रासलीला करो, हम यहां पे और एक लीला करेंगे। तो हम लोग जब तक कृष्ण को नहीं लेंगे, तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगी। तो यहां पे ये दसम स्कंद में आपको पूरा मिलेगा कि कृष्ण किस प्रकार से अपने साक्य रस सखाओं को आनंद दिए, कैसे वो अपने माता पिताओं को आनंद दिए, ये सब सुंदर सुंदर कथा आपको मिलेगी। पर ये कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण रस को प्राप्त करने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि आपको एक मूल्य चुकाना होगा। परीक्षित महाराज से कहते हैं ये कथा मैं सुनाऊंगा नहीं, एक मूल्य चुकाना होगा। कुछ भी वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है? एक दाम चुकाना होगा। आपको एक अच्छा फ्लैट चाहिए तो ऐसे ही आप जाके बैठ जाओगे? आपको फ्लैट कर देंगे, वो मालिक आएगा गुंडों के साथ, बोलेगा रे मेरे फ्लैट में, बोलेगा इसको फ्लैट कर दो। पर उसका मूल चुकाना होगा, जैसे 25 लाख या 30 लाख, हाँ या ना? या आप लोग ऐसे घुस जाते हैं? नहीं, एक मूल्य चुकाना होगा। कैसे? परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को मैं आप कथा नहीं सुना, और परीक्षित महाराज रुक गए। चार दिन तक कथा चली और परीक्षित महाराज और कथने के लिए बैठे थे, सुखदेव महाराज चुप बैठ गए। दो अध्याय में राम जी का कथा श्रवण कराए और दो श्लोक में कृष्णचंद्र जी का कथा श्रवण कराए। परीक्षित महाराज वहां बैठ गए और सुनाइए और सुनाइए, चुप बैठे। बोला चार दिन हो गई है, प्यास लग गई होगी, भूख लग गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। बोला वो तीव्रता दिखाई नहीं पड़ रही थी, परीक्षित महाराज के अंदर वो तीव्रता दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब तक हम वो तीव्रता नहीं दिखाएंगे, उस रस के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भगवान के उस रसमय कथा में प्रवेश नहीं। फिर परीक्षित महाराज तीव्रता को प्रदान के 15 श्लोक में, ये सब आपने श्रवण किए होंगे, कथित तो वंश विस्तार हो, अपने वंश का विस्तार बड़े सुंदर रूप में सुनाए। पर मुझे कृष्ण का कथा श्रवण कराए, श्रवण कराए। कृष्ण भक्ति रस भाविता, ये कृष्ण भक्ति जो है रस से पूर्ण है। क्रेता मेदि कुतो भी लभ्य थे, इस कृष्ण भक्ति जो रस है वो कहीं पे भी मिले, उसे प्राप्त करने की जो भी कीमत है उसे हमें चुकाना चाहिए। तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम, ये नहीं कि करोड़ों रुपया दे, लाखों रुपया दे, ये तो मूल चुकाना पड़े तो चुकाओ। मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए लाखों करोड़ों देते जाओ, पर रस जो है भगवान के कथा के लिए या भगवान के लीला के अंदर रस प्राप्त करने के लिए, तत्र लौल्यम लोलुपता जो है, उस लोलुपता को हमारे अंदर जागृत करना है। मुझे कृष्ण कथा चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, ये लोलुपता जब रहेगी तब हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोलुपता को जैसे ही परीक्षित महाराज ने दिखाए तब वो कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए लोलुपता, कृष्ण कथा जब हम श्रवण करते हैं तो कैसे श्रवण करना चाहिए? जैसे परीक्षित महाराज पूरी तरह से वे कथा में, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज जब कथा कह रहे हैं तो पूरे कथा में वो प्रवेश हो जाते हैं। जैसे मानो कि अब यहाँ पे कृष्ण और राधा रानी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वास्तव में अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं। और परीक्षित महाराज जब श्रवण कर रहे हैं वो भी ऐसे श्रवण करते हैं जैसे कि लोग स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते हैं। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज जो है कथा श्रवण करते कर भगवान का लीला को दर्शन करते हैं और प्रविष्ट हो जाते हैं। पर यह कृष्ण लीला को श्रवण करने के लिए लोलुपता होना चाहिए। कथा जो है सबको अच्छा लगता है। कथा दो प्रकार के, ग्राम्य और एक होता है भगवत कथा। कथा सबको अच्छा लगता है ना। कथा के माध्यम से सब आनंद लेते हैं। जो भौतिकवादी है वो भी कथा सुनना चाहते हैं, बोलते हैं और सुनाओ अनेक कथा। बच्चे लोग रात को कथा सुनते हैं, अपने नानी माँ सुनाती है उनको कथा, उनको अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और वृद्धों को भी अच्छा लगता है। अच्छा उसके घर में ऐसा हुआ तो एकदम, इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। कथा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। जैसे भौतिक शिक्षा, एक बड़ा पंडित थे, वे राजा के पुत्रों को शिक्षा देने गए थे और राजा के पुत्र इतने नटखट थे, वो गुरुकुल में जाते ही गुरुकुल के टीचर उन्हें निकाल देता था। ये जो पंडित आया वो वास्तव में पंडित था, ऐसे ऐसे कथा सुनाए जिसके माध्यम से वो अच्छे शिक्षक बने। तो ये पंच तात्रिक जो कथाएं हैं, कोई कोई कथा से अपने जान को बचा देते हैं कथा के माध्यम से। आप लोग ने बचपन में सुने होंगे ये अलीबाबा 40 चोर और कुछ कथा आपने बचपन में सुने थे कि नहीं? आप लोग शुद्ध भक्त हैं, आप प्रेमी भक्त हैं, हम केवल कृष्ण का श्रवण किए और राम कथा श्रवण किए। पर अलीबाबा 40 चोर नाम का भी कुछ कथा है, इसको 101 या 1001 अरेबियन रात्रि कहते हैं। संक्षेप में कथा यह है, एक राजा था, वे स्त्रियों के दुष्ट चरित्र को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने देखा उनके बड़े भाई के जो पत्नी है भाभी, वो दुष्ट है, स्वभाव की है, व्यभिचारी है। धक्का लगा और उन्हें यह भी धक्का लगा कि उनके पत्नी भी ऐसे ही व्यभिचारी नहीं है। ओ तो उन्होंने कहा कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। उन्होंने अपने पत्नी को मार दिया और दूसरे पत्नी को स्वीकार किया। एक रात बिताए और सुबह को उसको खत्म करते थे। नौजवान तरुणियों को बुलाते थे और रात को विवाह करते थे, सुबह उन्हें कत्ल करते थे ताकि मेरी पत्नी व्यभिचारिणी ना हो जाए, इसको व्यभिचार करने के लिए दूसरा दिन ना मिले, खत्म। ऐसे जितने भी तरुणी उस राज्य में थे उन सब से विवाह करके काट रहे थे। तब मंत्री का सुपुत्री का बारी आ गए, मंत्री डर गए पर बेटी बुद्धिमान थी, बोला कि आप चिंता मत करो पिताजी, मैं विवाह कर लेते हूं। बोला ये आज कल के प्रातः काल आप देखोगे नहीं, ऐसे सोच के रो रहे थे। बोला कि नहीं। तब ये चतुर कन्या ने क्या किया, कथा प्रारंभ किया, रात भर ऐसे कथा सुनाया। फिर ला के ऐसे एक रोचक एक बात निकालती है। और उसके बाद वो जो राजा था बोला कि आगे क्या हुआ, सुनाओ ना आगे क्या हुआ। बोला कि नहीं, अब प्रातःकाल हो चुकी है, कथा को विराम देती हूँ, रात को अगर आगे कथा जानकारी प्राप्त करना है तो रात को आ जाओ। तो फिर उसे बोलता कि हाँ आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रात को कथा शुरू करते हैं, फिर वापस कथा को शुरू करके दूसरी कथा को प्रारंभ करते हैं। सूर्य उदय होने से पहले ऐसे एक रोचक बात लेकर आती है, अब ऐसा हुआ, आगे बताओ, आगे बताओ, और क्या हुआ। अगले रात ऐसे करते करते 1000 रात निकाल दिए, कितने रात, और उनके 3 या 4 बच्चे हो गए। और राजा ने सोचा ये ठीक है, और उसका माफ कर दिया, उसका कत्ल नहीं किया। यानी कि कथा के माध्यम से लोगों को रोचक अच्छा लगता है, वो अपना जान बताए। यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान का कथा श्रवण करके मृत्यु के पर जय प्राप्त कर रहे हैं, पर कृष्ण कथा या कृष्ण भक्ति, कृष्ण के जो रसमय कथा है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोलुपता जागृत करना होगा। तो ये लोलुपता परीक्षित महाराज जी के अंदर पाया गया था। कृष्ण कथा इतना मधुर है कि कृष्ण कथा को श्रवण करते करते, कृष्ण अपने ही कथा को श्रवण करते करते उनके आंखें बड़े हो गए और वे जगन्नाथ जी बन गए। राधा गिरधारी से क्या बन गए, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। कृष्ण की कथा श्रवण करते करते जगन्नाथ जी जो है, कृष्ण जो है, बड़े आंखें हो गए। कृष्ण की कथा में कृष्ण ही बहुत ही हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज के अंदर जब लोलुपता देखी गई, तब यह कथा प्रारंभ किए परीक्षित महाराज। और कहते हैं कि एक बार ऐसा समय आया कि कंस जैसे दुष्ट राजा जो है पूरे जगत के ऊपर अपना शासन फैलाए। माँ जो है दुखी होने लग गई, धरती माँ जो है दुखी होने लग गई। जब पिता के बातों या आज्ञा का पालन नहीं होता है तो माँ बहुत दुखी हो जाती है, सही बात है, रोने लगी। कहा कि ये बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, पिता कहाँ है, इनको दंड देकर ठीक करें। माँ जो है हर प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार है, गर्भ में 9 महीने तक धारण करती है, और गर्भ का जो कष्ट है वो पुरुषों को पता नहीं। जो माता है वो जानते हैं गर्भ में 9 महीने तक कितना कष्ट होता है, पर खुशी है कि मेरा संतान आने वाला है। बच्चे मोटे हो जाते हैं तो माँ उन्हें उठाते हैं बड़े प्रेम से, बच्चे उन्हें लात भी मारते हैं पर माँ को अच्छा लगता है, वो धारण करते हैं। पर जिस वक्त बच्चे नटखट हो जाते हैं तो माँ को अच्छा नहीं लगता है। ये पृथ्वी जो है बड़े बड़े पर्वतों को उठाने में सक्षम है, बड़े बड़े सागर को उठाने में सक्षम है, पर एक पापी, एक द्रोही का भार पृथ्वी उठा नहीं पाती है। बोलते ये नहीं होगा मुझसे, ये लोग भगवान के कृष्ण के भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही पृथ्वी में करोड़ों करोड़ सागर हो, करोड़ों करोड़ पर्वत हो, मां पृथ्वी से बड़े प्रेम से उठाने के लिए सक्षम है, पर एक झूठा व्यक्ति आ जाए पृथ्वी कहेगी नहीं। मोटे मोटे बच्चे होते हैं माँ बड़े प्रेम से उठाते हैं, उनमें आनंद आता है उनको, क्योंकि ये बच्चा प्यारा है, हमारे बातों को मानता है, प्यारे है बच्चे। बचपन में मैं थोड़ा मोटा था तो जितने भी मेरे आंटी थे वो थोड़ी देर उठा के दूसरों को देते थे, पर माँ जो है थोड़ी देर उठाते। तो ये माँ का प्रेम है कि वो बच्चे को लेते हैं, पर जिस वक्त दुष्ट हो जाते हैं तो माँ कहती है ये मेरा बेटा नहीं है, खुद उसे मारने लग जाती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो माँ पृथ्वी जो है रोने लगी, गाय के रूप धारण करके वे चली ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जो है उस सभा में थे। ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि देवताओं को लेकर कहा कि अब जो मामला है इस पृथ्वी में वो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये ठीक करने के लिए हमें साक्षात विष्णु के पास जाना होगा, नारायण के पास जाना होगा, और नारायण के पास जाने वो क्षीर सागर के तट पर सभी देवताओं के साथ आए, और सभी देवता जो है भगवान विष्णु के गुणगान करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से पुरुष सूक्त नाम के सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान से याचना किए, प्रार्थना किए, और वर्णन आता है कि भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, ब्रह्मा जी के इस करुण पुकार को श्रवण किए और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, आप सब देवी देवता जो है तुरंत, इसी का वर्णन आज के और कल के तीन या चार श्लोक में इसका वर्णन आता है। कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान, ये भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं शीघ्र ही अब मथुरा से वृंदावन आऊंगा और अपना लीला संपन्न करूंगा, और आप जितने भी देवी देवता हैं तुरंत जाकर पृथ्वी में यदुवंश में आप आइए और मेरे स्वागत करने के लिए, मुझे लीला करने के लिए सहयोग दीजिए, ये आदेश दिए थे। ब्रह्मा जी भगवान की इस आज्ञा को श्रवण कर लिए, मोबाइल से नहीं, टेलीफोन से नहीं, या इंटरनेट स्काइप से नहीं, ब्रह्मा जी स्पर्श सूक्त का वर्णन कर रहे थे और क्षीर सागर में जो शिरोदक्ष विष्णु लेट रहे थे अनंत शेष पर, लक्ष्मी माता उनके पादुका का सेवा कर रहे हैं, वह श्रवण किए और ब्रह्मा जी से कहे मैं आऊंगा, आप सब मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। ब्रह्मा जी वही बात सारे देवताओं को सुना रहे हैं। ये जो ब्रह्मा जी की वाणी है, केवल ये जो कृष्ण की वाणी है, विष्णु की वाणी है, केवल ब्रह्मा जी ने श्रवण किए, बाकी और किसी ने श्रवण नहीं किए। तो ब्रह्मा जी सबके हित के लिए कहा कि सारे देवताओं से कहा कि आप सब चिंता मत कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, क्या बतलाया आप सब सुनिए, हमारे द्वारा याचना करने की पूर्व ही भगवान को पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके हैं, फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम, ब्रह्मा जी करें, तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतरण होना होगा। यह आदेश किसके लिए है, यह आदेश कौन दे रहा है? भगवान सारे देवी देवताओं को दे रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, ब्रह्मा जी इसमें मार खा गए। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, हम भी मार खाएंगे। ब्रह्मा जी को ही आज क्या भगवान ने कहा थे, सारे देवी देवता पुत्र और पौत्र बनकर यदु वंश में आइए। पर ब्रह्मा जी आगे जाके क्या करते हैं, वो चुपचाप हंस में बैठकर, अपने फ्लाइट में बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, और बाकी देवी देवता क्या है, यदुकुल में जन्म ले हैं। इसलिए ब्रह्मा जी आगे जाकर क्या हो जाते हैं, अपने चार सर को लेकर पूरी तरह से विमोहित हो जाते हैं जब कृष्ण का लीला को दर्शन करते हैं। ये आगे आपको कथा मिलेगी, ब्रह्मा किस प्रकार से विमोहित हो गए। ये आदेश ब्रह्मा जी को भी था कि उन्हें भी चाहिए था कि वे यदुकुल में जन्म ले, पर वो अपना फ्लाइट लेकर तुरंत कहां चले, सत्यलोक ब्रह्मलोक में। ठीक है, सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं को सारी, देवताओं के सारी स्त्रियां को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना होगा। केवल देवताओं के लिए नहीं, देवियों के लिए भी है आज्ञा है। देवी यानी कि देवी और देवता सब भगवान के इस्लाम में प्रविष्ट हो जाए। और कल के श्लोक में कृष्ण आगे कहते हैं, नारायण कहते हैं, कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण, अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है, वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। कलकत्ता में यह बताया था कि भगवान बलदेव के रूप में आएंगे, बलदेव जी के रूप में आएंगे। ये भविष्यवाणी किया जा रहा है, थोड़े ही समय में ये सब वाला है। भगवान का जन्म के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बलराम जी आएंगे, उनका नाम बलदेव पड़ेगा, शंकरशन होगा, इस प्रकार से बता रहे हैं। कल श्रीपाद ईश्वरपुरी का पावन पवित्र आविर्भाव तिथि था या तिरुभाव तिथि था, उसके उपलक्ष पर, और ये ईश्वरपुरी पाद जो है भगवान के गुरु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। इस उपलक्ष पर चंद कोपी प्रभु बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु रूप में स्वीकार किए। भगवान यहाँ पे एक आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यह जाती श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना, कि मैं भगवान होकर भी अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करता हूं, ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किए। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें भगवान के सेवा कैसी करनी चाहिए वो सिखलाता है। क्या शिक्षा देता है? भगवान की सेवा हम कैसे करें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ये गुरु है, ये गुरु का मुख्य कार्य है। और इसमें बलदेव जी जो हैं वो आदि गुरु हैं, उनका वर्णन कल के श्लोक में किया गया था। और भगवान कहते हैं मैं भी जब जब अपने लीला करने आता हूं तो गुरु को स्वीकार करता हूं। गुरु से हम क्या सीखते हैं कि कैसे हम सेवा करें, कीर्तन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, या मंदिर माध्यम के माध्यम से कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें, वो कौन हमें सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। और गुरु में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? बलराम। ये बलदेव जी जो है, बलराम तत्व जो है, इसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हुए कहते हैं कि बलराम जी भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है, दोनों भगवान है। तो इन दोनों में कौन शक्तिशाली है? दोनों भगवान में कौन शक्तिशाली है? कृष्ण भी भगवान है और बलराम भी भगवान है। ये वृंदावन का एक प्रवचन है प्रभुपाद जी का। बोलो कि कृष्ण बलवान है या बलराम बलवान है? तो सारे शिष्य देखने लगे। जो कहता है कि बलराम बलवान है वो हाथ ऊपर करे, जो कहते हैं कि बलराम कृष्ण से बलवान है, उनका नाम बल देव है, तो वह हाथ ऊपर करे। तो कुछ शिष्यों ने हाथ ऊपर किया और किस दूसरे शिष्य से कहे, जो कहते हैं कि कृष्ण बलराम से बलवान है वो अपने हाथ ऊपर करे। तो कुछ शिष्य ने हाथ ऊपर किया, फिर कुछ शिष्य ने दोनों तरफ के लिए हाथ नहीं ऊपर किए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन बलवान है बताओ? तो सारे शिष्य के लिए ये नया बात थी, तो देख रहे थे कौन बलवान है, कौन बलवान है। कृष्ण भी भगवान है, बलराम भी भगवान है। तो कहा कि आप देखिए श्री श्री कृष्ण बलराम जी यहां पे उपस्थित हैं। कहां पे? वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम जी वहां पे विराजमान है। आप में से कितने भक्त लोग वृंदावन के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन किए? सब ऊपर हाथ ऊपर करें। क्यों? ठीक है, उनके लिए प्रश्न है। आपने बलराम जी का दर्शन ठीक से किए, कृष्ण का दर्शन ठीक से किए, तो कौन किसके कंधे पे हाथ डालते हैं? हाँ, बलराम जी किसके कंधे पे हाथ डाल रहे हैं? कृष्ण के। तो प्रभुपाद जी ने कहा बलराम जी कृष्ण के कंधे में अपने हाथ डाल रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि कृष्ण बलवान है और बलराम जी कृष्ण के सपोर्ट ले रहे हैं, कृष्ण का सहायता ले रहे हैं। तो कौन बलवान हुआ? कृष्ण। कृष्ण बलवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण जो है भोक्ता है, भोग करने वाला भगवान है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्ण जो है भोग करने वाला भगवान है, कृष्ण जो है मालिक है, कृष्ण जो है मालिक है, कृष्ण और ये जो बलराम जी है वो सेवक भगवान है। क्या है? भगवान का सेवा कैसा करना है वो शिक्षा देने वाला सेवक भगवान है, और कृष्ण जो है सेवी भगवान है। समझ में आ रहा है? सेवी का अर्थ होता है जो सेवा को स्वीकार करते हैं, और सेवक का अर्थ होता है जो सेवा। तो एक है सेवा करने वाला भगवान, वो है बलराम जी, और कृष्ण क्या है? सेवी भगवान। कृष्ण जो है काला भगवान है, और बलराम जी जो है गोरे भगवान है। कृष्ण का मन गोरा है और बलराम जी का मन क्या है? काला है। ऐसे मैं नहीं कहता हूं, कृष्ण कहते हैं। किससे? यशोदा मैया से। जब यशोदा मैया से कंप्लेन किया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, तो बोला कौन कहा? बोला बलराम जी ने कहा। अरे बलराम जी भी झूठा है, उसका मन काला है। क्यों उनका मन काला है? कृष्ण कभी झूठ बोल सकते हैं? नहीं, कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कृष्ण कभी जो भी बोलते वो सच है या सच हो जाएगा, कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बलराम जी का मन काला है। क्यों? क्योंकि बलराम जी हमेशा किसका स्मरण करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बलराम जी जो है कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं, इसलिए बलराम जी का मन काला है। कृष्ण का मन गोरा क्यों है? तो माँ यशोदा ने बोले, क्या तुम्हारा मन गोरा है? तो बोला हाँ, मेरा मन गोरा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने भक्त का स्मरण करते। कौन है उनका भक्त? श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये है बलदेव तत्व, गुरु तत्व। कृष्ण जो है आदि गुरु, बलराम जो है वो आदि गुरु हैं। बलराम जी के रूप में आते हैं और उनके बड़े भैया के रूप में आते हैं। ये छोटे भैया जब थे तब भगवान उनके पर बहुत हावी हुए थे त्रेता युग में। तब लक्ष्मण मनी मन सोच रहे थे, एक दिन मैं उनके बड़े भैया बनकर आऊंगा, तब उन्हें सिखाऊंगा। भगवान सबकी इच्छा पूरा करते हैं, तो बलराम जी का इच्छा को भी पूरा किए। हमारे भी इच्छा भगवान पूरा करते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार की इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। मैं कुछ बातें बता रहा था कल के श्लोक में, उनके बड़े भाई का वर्णन आता है। तो आज के श्लोक में कहते हैं कि उनकी शक्ति का, कहते हैं कि उनके शक्ति जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित कर लेता है, और ये जो शक्ति है वही महामाया कहलाती है। भौतिक जगत में हमको पूरी तरह से विचलित कराता है, और यही शक्ति जब योग माया के रूप में आता है तो हमें आनंद प्रदान कराता है। आज हम सब मंदिर में बैठे हैं, आज हम सब मंदिर में भगवान की सेवा में युक्त हुए हैं। थोड़ा बहुत श्रीमती राधा रानी का, यानी कि योग माया का लेश मात्र कृपा हो चुका है, तो आज हम एक माला या 16 माला या 64 माला या अनेक माला करें। जो लोग बाहर इधर उधर घूम रहे हैं उनका हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर महामाया का कृपा है, हमारे ऊपर थोड़ा बहुत योग माया का कृपा है। वही है शक्ति जो आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित कराता है, वो योग माया, और इस भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाला है वो योग माया का विस्तार है, उसको क्या कहते हैं? महामाया। वही है, वो इस जगत को नियंत्रित कराता है। इसके ऊपर बड़े विस्तार में बताया जा सकता है, पर हम सब के लिए शिक्षा ग्रहण करने की बात यह है। हमारा हाल, कभी कभी कोई कहता है कि भक्ति में आने के, भक्ति में जब प्रवेश करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं ना, आजकल आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो? फलाना भक्त ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। कभी कभी सुनने में आता है, वो भक्त आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों? पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। आपने उनसे कभी बात किया? हाँ, वो बोल रहा था फलाना फलाना भक्तों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसे सुनने में आता है, कभी कभी सुनने में आता है। अरे वो भक्त मंदिर क्यों नहीं आ रहा है? ये कारण क्या है? कारण कोई नहीं है, कारण हमारा इच्छा है। कारण क्या है? हमारा इच्छा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतेर। स्मृति का अर्थ क्या होता है? स्मरण। किसके बारे में? भगवान के गुण रूप लीला के बारे में जो स्मरण है वो कौन कराता है हमारे हृदय के अंदर? भगवान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट हृदय में रहकर, कहते हैं कि आगे स्मरण भी कराते हैं और विस्मृत भी कराते हैं। जो लोग भगवान से दूर जा रहे हैं वो भगवान से दूर जाने का इच्छा कौन कराते हैं? वो भी भगवान ही देते हैं। भगवान हमारे सारे इच्छाओं को पूरा कराते हैं। जब ध्रुव महाराज से कहा कि आप, ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तब ध्रुव महाराज से कहा कि आपका इच्छा क्या है? तो बोला कोई इच्छा नहीं, मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मुझे तो साक्षात बहुत बड़ा हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, 36,000 वर्ष तक आप इस पृथ्वी पर राज्य करोगे। तो ध्रुव महाराज कान पकड़ने लगे, नहीं नहीं मैं, आप अपने सेवा से दूर करा रहे हो, आप मुझे आपका सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। बोला नहीं, आपको राज्य करना ही होगा। क्यों आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो अन्याय? मुझे आपका सेवा क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहा कि ये आपका इच्छा, मैंने तो ये इच्छा किया राज्य प्राप्त करने का, वो ठीक है, पर मेरा ये इच्छा है कि मुझे आपका सेवा चाहिए। रोने लगे, नहीं फिर भी आप 36,000 वर्ष राज्य कीजिए। बोले क्यों ऐसे मेरे साथ करो, ये आपका इच्छा है, मैंने कब इच्छा किया कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए? तो बोले इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। आप बहुत बड़े ऋषि थे, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, इससे पता लगेगा कि हमें किस प्रकार से इच्छा करना चाहिए। जब आपने जन्म में एक बहुत बड़े ऋषि थे, मुनि थे, आप इतना ध्यान कर रहे थे, इतने तीव्रता से ध्यान कर रहे थे कि मैं अपने वैकुंठ को छोड़कर आपके पास आया ही था, तब एक गुफा में, एक पहाड़ की गुफा में आप तप करके, ध्यान करके, इतना तीव्रता आपका इच्छा कि आपको दर्शन करने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए मैं आ ही रहा था, तब आपका ध्यान जो है थोड़े समय के लिए, जैसे ये रोड है इसमें से एक इंपाला गया था, तो राधा गिरधर जी का दर्शन छोड़कर देखा कि अरे इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा राजा, बड़े हाथी घोड़ा कब में जा रहा है, बड़े ठाट बाट से जा रहा है, काश मैं भी राजा होता। तो भगवान फ्लाइट से आ रहे थे, रोक दिया गरुड़ जी को, रोक दिया। उनका फ्लाइट क्या है? गरुड़ एयरलाइंस। रोक गए, भगवान बोला अच्छा, तो वापस गए, इनका ये इच्छा भी पूरा करना होगा। तो उनको एक राज परिवार में उत्तानपाद का पुत्र बनाया, सुनीति के पुत्र बना के बने वो। कहा कि मैं सबका इच्छा पूरा करता हूं, मेरे इस भक्त का इच्छा भी पूरा करूंगा। तो ध्रुव बनकर जब जन्म लिए तो वो भगवान का दर्शन किए, भगवान से कहा कि मुझे आपका सेवा चाहिए। बोला कि नहीं, 36,000 वर्ष तक राज्य की, ये 36,000 वर्ष का जो राज्य है ये इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने इच्छा किया था कि राजा होने से क्या ठाट बाट मिलेगी, तो 36,000 वर्ष तक राजा बन के रह गए। हम जो भी इच्छा करेंगे वो इस इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। अगर हमारा इच्छा आध्यात्मिक है तो हम भक्त बनेंगे, अगर हमारा इच्छा थोड़ा भी भौतिक रहेगा, अगर राधा गिरधर जी के सामने खड़ा रहकर हम थोड़े वहां पे देखेंगे ये कॉलेज के लड़कियां लड़कियां क्या कर रही है, तो बस गया, वो इच्छा भी पूरा कर देंगे। जब भी हमें भगवान के पास आना है तो हमें बड़े सावधान होना है, हमारे मन में क्या इच्छा उभर रही है भगवान जानते हैं। हम अब यहां पे बैठे हैं, हम अलग अलग श्रेणी के भक्त यहां पे हैं, कोई परमहंस के स्तर पर है, कोई मध्यम अधिकारी है, तो कोई प्राथमिक अवस्था में, जैसे स्कूल में कोई केजी क्लास में है तो कोई पीएचडी लेवल के हैं, कोई आधा छड्डी डालकर आता है तो कोई फुल पैंट डालकर आता है, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड, कोई सेकंड स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से भगवान का मंदिर जो है एक क्या है, स्कूल है। यहाँ पे कोई फर्क इतना ही है कि हमें पता लग जाता है भौतिक स्कूल में ये आधा छड्डी वाला मतलब प्राइमरी स्कूल, ये फुल पैंट वाला है तो सीनियर स्कूल, अभी ये सिविल ड्रेस में आ रहा है यानी कि टी शर्ट जीन्स में आ रहा है तो कॉलेज का है, पता लग जाता है। पर इस स्कूल में हमें थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा, मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना है, फिर पता लग जाता है कि उत्तम अधिकारी परमांश है और इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये उपदेश अमृत में आपको सिखाया जा रहा है आपके आपके काउंसिल में, और ये कनिष्ठ है ऐसा ये पता लग जाता है। थोड़ा बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा, बड़ा सावधान होना पड़ेगा। तो ये एक स्कूल है, हम भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, पर भगवान के सामने जो परमहंस भक्त आते हैं उनके अंदर एक ही इच्छा रहे, मुझे आपका भक्ति चाहिए, मुझे आपका भक्ति चाहिए, मुझे आपका भक्ति चाहिए। तो भगवान का जो शक्ति है योग माया, वो आकर उनके और भक्ति में लगा देता है, उनके भक्ति में प्रवेश कराता है। और जब कोई कनिष्ठ भक्त आता है तो उनके मन में अलग अलग विचार आते हैं। एक विचार आता है कि ठीक है मैं इनके जैसे भक्त बनूं, मैं अच्छे भक्त बनाऊं, तो दूसरा उनके 19 और इच्छा रहते हैं, थोड़ा बहुत धन मिले, थोड़ा बहुत यश मिले, थोड़ा बहुत सौंदर्य मिले, थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, ये वो चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं ये भी ठीक है, थोड़ा सा धन इधर फेंकते हैं, थोड़ा सा रूप दे देते हैं, और उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान का जो माया महामाया रूपी शक्ति है वो काम करने लग जाती है। तो जैसे हम जो है जीव, हमें तटस्थ शक्ति के रूप में जाना जाता है, तटस्थ शक्ति। तट इसीलिए क्योंकि आप सब समुद्र में गए, समुद्र में क्या होता है, रेत होता है, और रेत और पानी कभी कभी कुछ कुछ जो कण होते हैं रेत के कण, उसमें पानी रहती है और कुछ एकदम ही धूप में रहती है यानी कि पानी से रहित रहते, और कुछ कण जो है एकदम पानी के अंदर ही रहती है। समझ में आ रही बात, सागर के पानी के अंदर कुछ रहते रहते हैं। एक बार हम लोग इधर गए थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में आप सब जानते हैं महासागर है वहां पे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को खूब नहलाया था और हरिदास ठाकुर जी को घुमाया था, और हरे कृष्ण महामंत्र का खूब कीर्तन कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। चैतन्य महापुरुष ने घोषित कर दिया ये सागर नहीं, ये महासागर है, ये तीर्थों का तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आज यहाँ पे उनके शरीर का हमने अभिषेक किया, उनका मृत शरीर को लेकर कर रहे थे। तो हम थे वहां पे, किसी कारण से एक वृद्ध माताजी थी, शायद बेहोश हो गई थी वहां पे, मूर्छित हो गई थी, और सागर के लहर के साथ साथ कभी वो अंदर आ रही थी तो कभी बाहर जा रही थी, कभी कभी अंदर आ रही थी तो कभी कभी। तो मैं गौर से इस दृश्य को देख रहा था, तभी मुझे पता लग गया, थोड़ा बहुत ज्ञान आ रहा था भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। इसी प्रकार से मैं ध्यान देने लगा कि इस समुन्दर के लहरों के साथ कभी कभी ये लहर जो है जो बाहर के जो कण है उसे खींच के अंदर लेके आते, धर 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 अंदर लेके आते, और यही समुद्र के लहर जो है कभी कुछ रेत के कण को बाहर फेंकते, धर 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 धर, जैसे हम एक नारियल फेंकते हैं तो कुछ देर के लिए अंदर जाते फिर वापस कुछ लहर उसे बाहर लेके जाते हैं। आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा, तो इस श्लोक के साथ आप इसे मिलाइए, तटस्थ शक्ति जीव या तो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, या कभी अंदर कभी बाहर। तो ये जीव जो है भक्ति रसामृत सागर में कभी अंदर रहती है, अगर उनका तीव्र इच्छा रहेगा कि कृष्ण 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 मुझे आपका भक्ति चाहिए, या अगर उसका इच्छा ढीला रहेगा तो उनके अंदर ये सागर के लहर जो उन्हें बाहर फेंक दे। इसलिए हमको तट तट में रहते हैं, तो इसको बोलते तटस्थ शक्ति। आज का श्लोक जो है बहुत ही तात्विक श्लोक है, इसमें यही बताया जाता है अगर हमारा अंदर तीव्र इच्छा रहेगा कि कृष्ण 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 हमें आप चाहिए, तो हमें तुरंत इस जगत के तापों से निवृत्त करके भक्ति रसामृत रूपी सागर के जो लहर है हमें खींच कर अंदर लेकर जाएगी और भक्ति रसामृत सिंधु के सागर में हम बोते लगाते रहेंगे। पर शर्त यह है कि हमारा इच्छा होना चाहिए कि कृष्णा हमें आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए, तो कृष्णा हमें अपने धाम में लेकर जाएंगे। अगर क्योंकि कृष्ण स्वतंत्र है, स्वराट है, इसी प्रकार से कृष्ण के अंश होने के नाते हम भी स्वतंत्र है। कृष्ण हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर कृष्ण हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमें थोड़ा सा छूट देते हैं। कृष्ण जबरदस्ती हमें भगवत धाम लेकर नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम वहां पे एक गुट बनाएं। हाँ, गोलोक वृंदावन में वहां पे रासलीला चलता रहेगा और एक कोने में कहेंगे, अरे यार मुझे तो कृष्ण भक्ति करनी नहीं थी, अरे अपने आप को समझता क्या है, मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती किया, अरे कौन है रही है रासलीला कर रहा है, अरे मेरे साथ जबरदस्ती क्या है, अच्छा आपके साथ जबरदस्ती क्या है, मेरे साथ भी जबरदस्ती क्या, फिर वहां पे मोर्चा निकलेगा, हमारी मांगे पूरे करो, हमारे साथ जबरदस्ती किया गया है, हम नहीं चाहते थे गोलोक वृंदावन, हम नहीं चाहते थे, आपने हमें यहां से निकालो। भगवान जानते हैं बद्ध जीव का, भगवान तो ज्ञानी है, छह ऐश्वर्य भगवान के जानते हैं आप, है ना, उसमें से ज्ञान भी है, भगवदगीता का ऐसा श्लोक बोल, भगवान जानते हैं बद्ध जीव क्या कर सकते हैं, गोलोक में भी जाके आंदोलन खेल सकते हैं, बोलेगे हमने हमारे साथ जबरदस्ती किया, तो भगवान हमारे साथ वो नहीं कराना चाहते हैं। तो भगवान हमारे इच्छाओं को परखते हैं, अच्छी तरह से परखते हैं, हमें सावधान होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या इच्छा है। जब पूरी तरह से हमारा इच्छा होगा कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना धनम ना जन्म ना सौंदर्य कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका भक्ति चाहिए, ये जब भाव उत्पन्न होगा तो कृष्ण हमें अपने धाम लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो ये है अर्थ विष्णु माया भगवती। तो ये जो माया है दो रूप में काम करती है, पर अगर हम केवल कृष्ण का इच्छा रखेंगे, तीव्र इच्छा रखेंगे, तो योग माया हमारे सामने भक्त भेजेंगे, हमारे सामने गुरु भेजेंगे और हमें सुंदर भगवान के रूप लीला में प्रविष्ट कराएंगे। खबरदार, अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छा उत्पन्न हो गए तो ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ घट जाएंगी। ये उनके लिए जो लोग प्राथमिक स्तर पर है, मेरा चप्पल चोरी हो गया तो फिर वो आएंगे नहीं। कुछ उनको एक एक भक्त होते हैं मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ में फर्क क्या है, अरे आज मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, वो मंदिर आते 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 फिर एक दिन उनका चप्पल चोरी हो गया तो बोले मंदिर आना बंद करेगा। या प्रसादम के लाइन में सबको जलेबी दिया गया तो मैं जब थाली तो मेरे को आधा जलेबी दिया, नहीं मैं आज से मंदिर नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक। भक्त खराब नहीं होते हैं, कोई भक्त खराब नहीं है, उनको श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या नाम देते हैं, कनिष्ठ कहते हैं, कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी। एक दिन आएंगे फिर कुछ हो गया तो आना बंद करेंगे। पर प्रभुपाद जी चाहते हैं कि उनके इस मंदिर में आने वाले जितने भी दर्शनार्थी है वो कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी बने। मध्यम अधिकारी का कितने भी चप्पल चोरी हो जाए वो बोलेंगे नहीं मैं मंदिर आऊंगा, है ना। उनको प्रसादम में जलेबी मिला भी नहीं तो भी कहेंगे नहीं मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगा, भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा। ये मध्यम अधिकारी ऐसे होना चाहिए, मध्यम अधिकारी ऐसे मध्यम अधिकारी भक्त हमें बनना चाहिए। तो ये मोह हमारी इच्छा को तीव्र बनाते रहना चाहिए, तीव्र बनाते रहना चाहिए, हमें कनिष्ठ के स्तर पर रहना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, जो भी भगवान का एक नाम कृष्ण का उच्चारण करते हैं वो भगवत धाम जाने का योग्य हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त कर ही लेगा। कब और कैसे ये कृष्ण जानते हैं, उनके भक्त जानते हैं। जो भी मंदिर में आया भगवान के सामने प्रणाम किए प्रसाद पाए वो जरूर कृष्ण भक्त बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे करेंगे करेंगे। जिस प्रकार से जो भी स्कूल में आता है वो पास करके 10th स्टैंडर्ड स्कूल छोड़ता है, इसी प्रकार से जो भी मंदिर आता है वो जरूर एक दिन भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। बुद्धिमान कौन है जो स्कूल में आया और समय से पास हुआ, फर्स्ट रैंक लिया या प्रमोशन, डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन लिया, तो बहुत ही बुद्धिमान, आया और पास करके गया। हमारे भक्तों में एक भक्त है, वो 15 साल की आयु में अमेरिका में पीएचडी लिया, तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही बुद्धिमान हो, यानी कि जल्दी से फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में इसको प्रमोशन मिला। इसी प्रकार से हम सब जीव हैं, जो जितना जल्दी कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर लेता है वो बुद्धिमान होना है। हमको बुद्धू नहीं बनना है, जो स्कूल में आया फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 साल, सेकंड स्टैंडर्ड में 2 साल, थर्ड स्टैंडर्ड में 3 साल, ऐसा नहीं, आए जल्दी निकल जाना था। हमें बुद्धिमान होना चाहिए, तीव्रता होना चाहिए। यह तीव्रता शिवजी के अंदर पाया गया है, इसलिए वो महाभागवत है। तो शिवजी का शिवरात्रि है, अनेक उनके लीलाएं हैं, पर यह है कि शिवजी को पता लगा कि सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में, यानी कि ये जो नवद्वीप धाम है वहां पे एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, जितने भी इस जगत में क्षेत्र है, जितने भी तीर्थ है, वो सब आपको नवद्वीप में मिलेगा। कहां मिलेगा? और नवद्वीप कहां है? मायापुर, नवद्वीप। जितने भी तीर्थ है वो आपको मिलेगा मायापुर में। सूत गोस्वामी जो है सौनक ऋषि इत्यादियों को गौर भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, गौर कथा श्रवण करा रहे हैं। ये जैसे पता लग गई, सारे मीडिया, सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे न्यूज़पेपर में छप गई, गौर भागवत चल रहा है, गौर भागवत चल रहा है। तो ब्रह्मा जी अपने पर बैठे, शिव जी अपने नंदी पे बैठे और गौर भागवत श्रवण करने आए थे। क्या श्रवण करने आए थे? कहां पे हो रहा है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। और ये नैमिषारण्य क्षेत्र कहां है? ये नवद्वीप के नैमिषारण्य क्षेत्र में। कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी श्रवण करा रहे। तो हंस में बैठकर ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक से नीचे आ रहे हैं और कैलाश से कौन निकले और नंदी कैसे चल रही थी, नंदी का क्या स्पीड होगा, और एकदम स्पीड में जा रहे थे कौन, ऊपर से ब्रह्मा जी। तो शिवजी बोले रुक जाओ, ब्रह्मा जी को बोले रुको, देखो मुझे गौर भागवत श्रवण करना है, मुझे गौर भागवत श्रवण। अच्छा, तो मेरा नंदी बहुत स्लो जा रहा है, जाते जाते वहां पे प्रसादम शुरू हो जाएगा। ओ, मुझे क्या करना होगा? तो बोला ब्रह्मा जी से, कृपा करके आपके जो हंस है वाहन, वो मुझे थोड़े समय के लिए दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, उनकी तीव्रता को देखकर बोला ठीक है। तब शिव जी उस हंस पर बैठे, स्पीड पे गए, एकदम स्पीड में कैलाश से सीधे पहुंचे, गौर भागवत जाम पे हो रहे और श्रवण करने लगे। ये शिवजी का जो विग्रह है, अद्भुत विग्रह जो है, आज भी आपको नवद्वीप के एक धाम में मिलेगा, जहां पे पार्वती ने तिलक लगाए थे, भगवान गौर जी के चरणों का धूल अपने मस्तक पर लगाए, वो कौन सा धाम है? सीमांत द्वीप, यानी कि माथे पे जो तिलक लगाते, सीमंतनी द्वीप जो है वहां पे आज भी शिवजी का वो विग्रह, आप ध्यान से श्रवण कीजिए, शिवजी का विग्रह है, शिवजी हंस में विराजमान है, पर शिवजी कहां पे है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ध्यान से जब आप देखोगे तब पता लगेगा कि शिवजी जो है ऐसे नहीं बैठे हैं, शिवजी ऐसे लेटे हुए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि शिवजी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं कि एकदम फ्लैट ऐसे सोए हुए हैं पीछे की तरफ एकदम, जैसे कुछ आप लोग कार में देखते हैं, कुछ गाड़ी के कार सीट होते हैं ऐसे, फिर ऐसे, जब ड्राइवर को आराम करना होता है तो ऐसे हो जाता है, चलाते वक्त नहीं नहीं तो फिर हमेशा के लिए, तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो शिव जी ऐसे थे शुरू में, फिर ऐसे 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 करके ऐसे हुए। प्रश्न उठता है कि ऐसे हुए, शिव जी ने देखा कि मुझे तुरंत जाना है और ये हंस जो तेज गति से जा रही है, पर वायु जो है हंस का जो गति को कम कर रही है, क्योंकि उनके छाती को लग रहा था और गति स्लो हो गई, तो वायु से टकराने के कारण, शरीर से टकराने के कारण गति स्लो हो रही थी। तो शिव जी ने कहा मुझे स्लो नहीं होना है, एकदम से लेट गए ताकि वायु से गति रोक ना जाए, उनके शरीर को टक्कर मार के गति स्लो ना जाए, एकदम से अपने शरीर को अनुकूल परिस्थिति में के। ये दिखाता है कि शिव जी के अंदर कितना कितना तीव्रता है, क्या सुनने के लिए, गौर कथा सुनने के लिए, गौर कथा, गौर कथा ऐसे ललुपता होना चाहिए। आज ये जो है इसके अंदर इतना तेज गर्मी निकलती है, कहते हैं कि तीव्रता जो है शिव जी के इतना है कि वो गांव के गांव जलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो नदी बह रही है उस विग्रह को पानी में रखते हैं, साल के एक ही दिन उस विग्रह को बाहर निकालते हैं, नहीं तो उस शरीर से शिव जी के इस विग्रह से इतने तीव्रता थी, इतने तीव्रता थी, कहते हैं कि उस विग्रह में आज भी गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए पानी उसमें बार बार डाला जाता है। ये गर्मी किसका है, शिव जी के शरीर के, क्यों, क्योंकि अंदर वो तीव्रता थी, क्या श्रवण करने के लिए, गौर भागवत कथा श्रवण करने। ये तीव्रता अगर हमारे अंदर रहेगा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण ही चाहिए मुझे, कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियता मेदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम। ये ललुपता जब रहेगा तो ही हम कृष्ण की भक्ति में प्रविष्ट हो सकते हैं। चलो आज तिलक लगाए, थोड़े कंठी मलाल लगाए, थोड़ा हरे कृष्ण कृष्ण, ये चलेगा नहीं। हाँ, टेलीविजन देखा, हरे कृष्णा, नहीं नहीं, मुझे कृष्ण 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 चाहिए, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह ललुपता अगर जागृत हो जाएगी तो हम कृष्ण भक्ति में प्रविष्ट हो जाएंगे। यह शिव जी के अंदर पाया गया था वो तीव्रता, तब कृष्ण इसी प्रकार से शिव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें। जिस प्रकार की ललुपता तीव्रता आपके अंदर कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो ललुपता हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, मैं आपसे वो प्रश्न सुनना चाह रहा हूं। अगर आप में से वो प्रश्न नहीं आया तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा और आप ही से वो जवाब लेने का प्रयास भी करूंगा। मैं एक प्रश्न आप सबसे सुनना चाहता हूं, एक प्रश्न इच्छाओं के बारे में। महामाया हमें क्यों वश में करती है, ये प्रश्न नंबर एक, क्यों। प्रश्न नंबर दो, कभी कभी हमें भक्ति अच्छा लगता है, ऐसा क्यों। तीसरा एक प्रश्न है जो मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, अगर मैं आप पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा, जवाब आपसे लेने का प्रयास करूंगा, बताइए। ठीक है, इतने सारे लोग बार बार क्यों रहे हैं, वो किसके अंतर्गत है, कौन सा शक्ति के अंतर्गत है, क्यों, उनके इच्छाएं कैसे है। हाँ, भौतिक है, इसलिए भौतिक जगत में भटक रहे हैं। हम भक्त बन रहे हैं, अच्छे भक्त बन रहे हैं या शुद्ध प्रेमी भक्ति बन रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हम किसके अंतर्गत हैं और क्यों, क्यों कारण क्या है। क्या कृष्ण हमें जबरदस्ती भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं, क्यों, हम किसके अंतर्गत हैं, अभी जब हम श्रवण कीर्तन भगवान के करें तो किसके अंतर्गत है, कौन से शक्ति के अंतर्गत, योग माया के अंतर्गत, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर क्या है, आध्यात्मिक इच्छाएं है ना। अच्छा, अब प्रश्न मेरा ये किया है, क्योंकि आप सबसे नहीं आ रहा है और समय बहुत हो रही है तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ, मैं भक्त हूं, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, भक्ति का इतना महिमा श्रवण किया, भक्त इतने अच्छे होते हैं, मैं भी भक्त बनना है, पर मैं भक्त बन नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक इच्छा है और बहुत सारा भौतिक इच्छा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर केवल आध्यात्मिक आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए, अब मैं क्या करूं बताइए। मेरा प्रश्न आप सबके लिए कि मेरे अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, पर मैं भक्त बनना चाहता हूं, भौतिक इच्छाएं बहुत हैं, तब मुझे क्या करना होगा? ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, कथा सुनने का भी इच्छा नहीं करेगी तो मैं सुना, कोई बोला कथा सुनो, कोई बोला भक्त का संग करो, ठीक है, मुझे कथा करने की इच्छा नहीं है, भक्तों का संग करने की, फिर भी एक इच्छा है कि मेरे अंदर भी तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, फिर भी एक इच्छा है। भौतिक इच्छाएं अनेक है, फिर भी एक इच्छा सुनने में आया, जैसे एक डाकू सुना कि गोपाल नाम का एक बालक वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर गहने धारण करता है, कथा जब खत्म हो गए, समाप्त हो गए, तो गोपाल को ढूंढने गए, फिर वो गोपाल को पाया, तीव्रता जागृत हो गई। तो मैं पूछ रहा हूं कि ठीक है, मेरे अंदर तीव्रता नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या करूं? गुरु के शरण, ठीक है, गुरु का शरण मुझे मिला नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना है? ठीक है, सेवा नहीं करना है मुझे, मैं देख रहा हूं सेवा अच्छा है पर सेवा करने की इच्छा नहीं है, माला जप करना चाहिए, ठीक है, माला हाथ में है पर रुचि नहीं है, तो क्या करना चाहिए? भगवान से खूब प्रार्थना किया है फिर भी कुछ हुआ नहीं, ठीक, प्रसाद प्रसाद लेता हूं फिर भी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? कीर्तन में रहना चाहिए, ठीक है, कीर्तन में भी रहता हूं फिर भी इधर उधर के क्रिकेट का स्कोर सुनने का भी रुचि होता है, प्रार्थना करना चाहिए। जवाब यह है कि प्रार्थना करना चाहिए, स्वयं भी बहुत प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना भी भक्ति का एक अंग है, वंदनम है ना, वंदनम यानी कि प्रार्थना, वंदनम प्रार्थना करने में, हमारे प्रार्थना में शक्ति नहीं है तो और भक्तों से कहना चाहिए, आप मेरे लिए कृष्ण से प्रार्थना करना कि मेरे अंदर तीव्र भक्ति जागृत हो, जिस प्रकार से शिव जी के अंदर पाया गया था। ये इतना कम से कम करेंगे, कम से कम, चाहे हमारे प्रसाद के अंदर रुचि ना हो, नहीं कीर्तन में रुचि ना हो और भक्तों के संग सेवा में रुचि ना हो, पर अगर हमारे लिए और भक्तों ने अगर प्रार्थना किया तो जरूर एक दिन कीर्तन प्रसाद सेवा सब में रुचि उत्पन्न हो जाएगी और हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत हो जाएंगी और हम हमेशा के लिए योग माया में ही रह जाएंगे, अंतर्गत रह जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि हम सबको योग माया का पूरा पूरा कृपा मिले, हम सब भक्ति में अग्रसर होकर प्रभुपाद जी गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाएं, यही प्रार्थना भगवान जी के चरण कमलों। हरे कृष्णा। बड़े ध्यान से आपने श्रवण किए, बड़े आभारी, धन्यवाद।
प्रभु की
श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज दोपहर को फिर से गुड़ाकेश प्रभु जी के द्वारा सुंदर कथा होगी, आप सब उसका भी लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। अभी सबके लिए प्रसाद, फिर प्रसाद के बाद कीर्तन में रहिए और अगले कथा के लिए आइए। हरे कृष्णा। थैंक यू। नहीं।